गंगा का जल आज असामान्य रूप से शांत था। न हवा थी, न पक्षियों की आवाज, केवल मंत्रों की धीमी भारी गूंज जो तट पर बने विशाल यज्ञ मंडप से उदकर आकाश में ठहर जाती थी। चांदी की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह घुटनों के बल बैठा था। कभी उसके नाम से राजाओं की नींद उड़ जाती थी, आज उसका सिर झुका हुआ था पर टूटा नहीं। उसकी पीठ पर कोड़े के ताजा निशान थे, रक्त बहकर कमर तक जम चुका था, कंधों पर धूल और राख चिपकी थी, फिर भी उसकी रीढ़ सीधी थी जैसे वह अभी भी किसी सिंहासन पर बैठा हो। सभा स्थान अर्धवृत्ताकार था, पत्थर की ऊंची आसंदियों पर विभिन्न गुरुकुलों के आचार्य बैठे थे, केसरिया सफेद घेरुए वस्त्र, माथों पर भस्म चंदन रक्त चिन्ह। बीच में वह और सबसे ऊंची आसंदी पर वह उसकी दृष्टि उठी। नीले रेशमी वस्त्र, कंधों पर स्वर्ण जटित कवच, ललाट पर त्रिपुंड, बाल पहले से अधिक छोटे सधे हुए, आंखें ठंडी। महाधिष्ठात्री आर्या देविका, सभा के एक वृद्ध ने घोषणा की, दोषी को अंतिम अवसर दिया जाए। वह काली अग्नि हल्का हंसा, जंजीरें खनकी, अंतिम अवसर, उसकी आवाज थकी हुई थी पर कापी नहीं। कब से आप लोग अवसर देने लगे? सभा में हलचल हुई। एक युवा आचार्य क्रोध से उफनता हुआ अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखों में आग जल रही थी। अब भी व्यंग्य कर रहे हो, उसने कड़कती आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से 108 शिष्यों की सातों चक्र भस्म हो चुकी हैं। उसने गर्दन टेढ़ी की, कमजोर थे, भीड़ में से एक महिला की सिसकी सुनाई दी, सैनिकों ने उसे पीछे धकेल दिया। देविका ने हाथ उठाया, शोर थम गया, वह धीरे धीरे खड़ी हुई, उसके खड़े होते ही शंखनाद हुआ जैसे कोई युद्ध फिर से आरंभ हो रहा हो। वह सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आई, दोनों के बीच केवल एक भुजा भर की दूरी थी। तुम्हें पश्चाताप है? उसने पूछा। उसने ऊपर देखा, सीधे उसकी आंखों में। तुम चाहती हो कि हो? उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। ये तुम्हारा अंतिम उत्तर है? वह झुका नहीं। तुमने मुझे तब नहीं रोका जब मैंने साम्राज्य तोड़ा, आज क्यों रोकोगी? एक पल, गंगा की सतह पर हल्की लहर उठी। सभा के प्रधान ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। चारों दिशाओं में अग्निकुंड प्रज्वलित हुए, धुएं की लकीरें आकाश में मिलकर एक चक्र बनाने लगीं। काली अग्नि, प्रधान ने घोषणा की, तुम पर आरोप है निषिद्ध तंत्र साधना, प्राणहरण और देव विरुद्ध अस्त्र प्रयोग का, क्या तुम इन आरोपों को स्वीकारते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, आपने जो सुना है वही सत्य मान लीजिए। स्पष्ट उत्तर दो, एक अन्य आचार्य गर्जा। उसने गर्दन मोड़ी जैसे थक गया हो। हाँ, मैंने किया, और जो नहीं किया उसका श्रेय भी दे दीजिए। सभा में क्रोध की लहर दौड़ी, देविका की उंगलियां क्षणभर के लिए मुट्ठी बनी फिर ढीली हो गईं। दंड, प्रधान ने घोषणा की, चक्रवध। चार सैनिक आगे बढ़े, उनके हाथों में विशाल त्रिशूल थे जिनकी नोक पर नीली ज्वाला जल रही थी, विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित। जंजीरों को और कस दिया गया, उसकी कलाई से रक्त की नई धार निकली। वह झुका नहीं, देविका उसके और निकट आई, इतनी कि उसके केश उसकी भुजा से छू गए। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने धीमे स्वर में कहा जो केवल वही सुन सकता था। वह हल्का झुका जैसे सुनने में कठिनाई हो रही हो, तुम्हें या तुम्हारे धर्म को? उसकी आंखें पहली बार कांपी, तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने फुसफुसाया, निषिद्ध अग्नि मत जगाओ। वह हंसा, इस बार धीमे गहरे, तुम्हें उसकी ऊष्मा पसंद थी। एक सैनिक ने त्रिशूल उसकी पीठ में धंसा दिया, भीड़ से एक साथ सांस खींचने की आवाज आए। नीली ज्वाला उसके शरीर में फैलने लगी, त्वचा जलने की गंध हवा में घुली। उसने दांत भींचे पर कोई चीख नहीं निकली, दूसरा त्रिशूल उसके कंधे के आर पार हुआ। देविका ने नजर नहीं हटाई, तुम्हारा अंत आवश्यक है, उसने ऊंचे स्वर में कहा, ताकि सभा सुन सके, धर्म की रक्षा हेतु। वो मुश्किल से सांस ले रहा था, फिर भी बोला, धर्म किसका? तीसरा त्रिशूल उसके वक्ष में उतरा, उसका शरीर झटका खाकर पीछे गया, जंजीरें तन गईं। मंत्रों की गति तेज हो गई, अग्निकुंडों की लपटें ऊंची उठीं। प्रधान ने अंतिम घोषणा की, प्राणाग्नि विच्छेद। देविका ने स्वयं आगे बढ़कर उसके ललाट पर अंगूठा रखा, उसके नाखून से रक्त की एक बूंद निकली। अब भी समय है, उसने अंतिम बार धीमे कहा। उसने आंखें आधी खोली, उनमें दर्द था पर विनती नहीं। तुम देर से आए हो, उसने फुसफुसाया, आकाश में गर्जना हुई, मंत्रों का शिखर। देविका ने हाथ पीछे खींचा, चौथा त्रिशूल ऊपर उठा सीधा उसकी गर्दन की ओर। भीड़ ने सांस रोक ली, नीली ज्वाला की धार हवा चीरती हुई नीचे उतरी और त्रिशूल की नोक उसकी त्वचा से छू गई, क्षण थम गया जैसे समय ने स्वयं अपनी श्वास रोक ली हो। त्रिशूल की नोक गर्दन में धसी, मांस फटा, रक्त की एक गर्म रेखा नीचे बह निकली, भीड़ से दबा हुआ क्रंदन उठा, फिर मंत्रों की आवाज उसे ढंग गई। पर उसी क्षण उसे कुछ और महसूस हुआ, दर्द नहीं, दर्द तो वह पहचानता था, ये कुछ और था। उसकी प्राण नाड़ी में, जहां से नीली ज्वाला भीतर उतर रही थी, एक सूक्ष्म काली चिंगारी टकराए। काली, वह ज्वाला उसकी नहीं थी। उसने आंखें खोली, आधी दृष्टि धुंधली थी, रक्त उसके गाल से होकर ठुड्डी तक आ चुका था। पर उसकी दृष्टि ऊपर नहीं गई, देविका पर भी नहीं, उसने बाएं देखा। सभा के तीसरे वलय में, जहां निम्न आचार्य बैठे थे, एक चेहरा, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई आंखें, स्थिर मुख, आचार्य वत्सराज, उसके पुराने गुरु, वही जिसने उसे पहली बार निषिद्ध तंत्र का सूत दिखाया था और फिर सार्वजनिक रूप से उसका विरोध किया था। वत्सराज की आंखें उससे मिली एक क्षण, और उस क्षण में भय था। भय नहीं, गणना, जैसे वह देख रहा हो, क्या यह वध सफल होगा? त्रिशूल की ज्वाला भीतर और धसी, उसकी प्राण नाड़ी फटने लगी, शरीर का पा, मगर उसी टूटती हुई नाड़ी में उसे स्पष्ट अनुभव हुआ, उसकी प्राणाग्नि को कोई बाहर से खींच रहा था। चक्रवध की विधि में ऐसा नहीं होता, चक्रवध प्राण को काटता है, ये कोई उसे सोक रहा था। उसने खांसते हुए रक्त उगला, आवाज टूटी पर निकली, ये तुम्हारा मंत्र नहीं है। प्रधान आचार्य ने भौहें सिकोड़ दी, मंत्र पूर्ण है, उसका प्राण विघटित हो रहा है। झूठ, उसने बमुश्किल कहा। देविका ने झुककर उसके चेहरे को देखा, क्या कहना चाहते हो? उसने फिर बाएं देखा, वत्सराज अब मंत्रोच्चार कर रहा था, होंठ हिल रहे थे, पर उसका लय बाकी मंत्रों से अलग था, सूक्ष्म अलग, उसकी दृष्टि तेज हो गई। हाँ, वो वही लय थी, निषिद्ध तंत्र, अग्नि आहरण, जो उसने कभी अधूरा सीखा था, वत्सराज ने उसे सिखाया था, ये केवल ज्ञान के लिए है। झूठ, वह उसे इसलिए सिखा रहा था क्योंकि वह पूर्ण नहीं कर सकता था। त्रिशूल की ज्वाला उसकी रीढ़ तक पहुंच गई, पैर सुन्न होने लगे। देविका ने कठोर स्वर में पूछा, क्या कहना चाहते हो, बोलो। वह हंसा, खून के साथ बुलबुले उठे, तुम्हें किसने ये कह दिया कि मैंने देवताओं के विरुद्ध कोई अस्त्र गढ़ने की चेष्टा की थी? देविका का चेहरा क्षणभर कड़ा हुआ, गुरु वत्सराज ने साक्ष्य प्रस्तुत किया। उसकी आंखें चमकी, साक्ष्य, उसने बमुश्किल दोहराया। फिर उसकी दृष्टि सीधी वत्सराज पर टिकी, वृद्ध ने मंत्र की गति और तेज कर दी। अब स्पष्ट था, नीली ज्वाला उसके भीतर केवल जल नहीं रही थी, कोई उसकी काली अग्नि को बाहर खींच रहा था, उसकी अपनी शक्ति, उसकी साधना, उसके वर्षों की तपस्या, चुरा रहा था। तुम, उसने बमुश्किल स्वर निकाला, वत्सराज की आंखें फिर उससे मिली, इस बार एक क्षीण मुस्कान, बहुत हल्की, जैसे कोई गणित का कठिन प्रश्न हल कर चुका हो। त्रिशूल चौथा भी धंस गया, गर्दन से रक्त फव्वारे की तरह नहीं बल्कि मोटी धार बनकर बहा। भीड़ अब जयघोष कर रही थी, धर्म की जय, अधर्म का नाश। देविका ने हाथ उठाया, शांति हुई, वह झुकी, तुम्हें अंतिम अवसर दिया था, उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने चुना। उसने आंखें उसके चेहरे पर टिकाई, अब उसमें आरोप नहीं था, केवल समझ, तुम मोहरा हो, उसने फुसफुसाया। देविका की भौं हल्की कांपी, क्या? उसने उत्तर नहीं दिया, उसकी दृष्टि फिर वत्सराज पर गई। वृद्ध अब पसीने में था, मंत्रोच्चार के साथ उसकी उंगलियां सूक्ष्म मुद्राएं बना रही थीं, सभा से छिपी हुई। और तब उसने देखा, वत्सराज के पीछे आकाश में अग्निधूम के भीतर एक काला चक्र बन रहा था, सूक्ष्म अदृश्य लगभग, पर उसकी आंखें उसे पहचानती थीं। वह उसकी अग्नि थी, खींची जा रही थी, संग्रहित, तुम मेरे बिना, वह बुदबुदाया, पूर्ण नहीं कर सकते। उसकी प्राण नाड़ी अंतिम बार कांपी, देविका ने उसका चेहरा पकड़ लिया, किसकी ओर देख रहे हो? उसने प्रयास किया शब्द स्पष्ट हो, पीछे, देविका ने स्वाभाविक रूप से पीछे देखा, पर उस क्षण वत्सराज ने मंत्र रोक दिया, काला चक्र विलीन, सब सामान्य, कुछ नहीं, देविका ने कहा, फिर उसकी ओर देखा, तुम भ्रम देख रहे हो। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, ध्वनियां दूर जा रही थीं, भीड़, मंत्र, गंगा की लहर, सब पीछे हटते हुए, केवल एक बात स्पष्ट थी, उसे युद्धभूमि में नहीं हराया गया था, उसे प्रयोग किया गया था। त्रिशूलों की ज्वाला भीतर अंतिम बार भड़की, उसकी रीढ़ की जड़, मूलाधार चक्र के समीप एक अति सूक्ष्म काली बूंद शेष रह गई थी, और शेष सातों चक्रों में भी कहीं कहीं वैसी ही अत्यंत महीन अंधेरी कनिकाएं अब भी टिमटिमा रही थीं। इतनी छोटी कि कोई देख न सके, पर वह जीवित थी, उसने अंतिम सांस खींची। देविका की आंखें उसके चेहरे पर थीं, अब समाप्त, उसने कहा। उसकी गर्दन ढीली पड़ गई, जंजीरें स्थिर, त्रिशूल जमे हुए। भीड़ से विजय ध्वनि उठी, और उसी क्षण उसके भीतर की वह सूक्ष्म काली बूंद कांपी, कांपी जैसे राख के नीचे दबा अंगारा अंतिम बार लाल हुआ हो। त्रिशूल अब भी उसके शरीर में धंसे थे, रक्त ठंडा होने लगा था, गर्दन एक ओर झुक चुकी थी, आंखें आधी खुली पर उनमें जीवन का प्रतिबिंब नहीं। सभा ने निर्णय घोषित कर दिया था, प्राणाग्नि विच्छेद पूर्ण, पर भीतर अंधकार नहीं आया, पहले उसे लगा यह मृत्यु का विस्तार है, एक लंबा खींचा हुआ शून्य, फिर उसने महसूस किया वह गिर रहा है, शरीर नहीं, कुछ और, जैसे चेतना किसी गहरे कुएं में उतर रही हो, बिना दीवारों के, बिना तली के, चारों ओर स्याह शून्य, न मंत्र, न भीड़, न देविका, न वत्सराज, केवल गिरना, और उस गिरते हुए शून्य में वह बूंद। वही सूक्ष्म काली बिंदु मूलाधार के पास जो बची थी। अब वो अलग थी, शरीर से मुक्त, जैसे उसकी समूची सत्ता उस एक बिंदु में सिमट गई हो। ये मृत्यु है, उसकी चेतना में विचार उठा, पर विचार भी पूरा नहीं बना, शब्द जैसे पिघलकर आकार खो देते थे। गिरना जारी, अचानक धप, न आवाज न टक्कर, बस गिरना थम गया। वो तैर रहा था शून्य में, और उस शून्य में धीरे धीरे धुंधली आकृतियां बनने लगी। अग्निकुंड, गंगा का तट, त्रिशूल, पर वे स्थिर नहीं थे, जैसे स्मृति हो जो पूरी नहीं बन पा रही। फिर एक और दृश्य उभरा, गुरुकुल का आंगन। वो युवा था, घुटनों तक धोती, बाल खुले, सामने वत्सराज। निषिद्ध तंत्र का उद्देश्य केवल उसे जानना है। गुरु का स्वर गंभीरता से प्रतिध्वनित हुआ, जो इसे सिद्ध करने का साहस करेगा वह देवों और दानवों दोनों का शत्रु बन जाएगा। दृश्य टूट गया, अंधकार फिर घना, उस काली बूंद से हल्की गर्मी उठी। वह गर्मी फैलने लगी, जैसे वह शून्य को पहचान रही हो। मैं समाप्त नहीं हुआ, चेतना में एक कंपन उठा, और तभी धक, एक ध्वनि बहुत दूर से, फिर धक धक, नियमित, लयबद्ध। उसने ध्यान लगाया, यह मंत्र नहीं था, न शंखनाद, ये धड़कन थी हृदय की, पर उसका शरीर तो गंगा तट पर पड़ा था, प्राण विच्छेद पूर्ण हो चुका था। फिर यह धड़कन किसकी? धक धक धक, हर धड़कन के साथ शून्य में हल्की लहर उठती, जैसे कोई दरवाजा भीतर से खटखटा रहा हो। उस काली बूंद ने उस लय की ओर खींचना शुरू किया, पहले धीमे फिर तेज, शून्य खींचने लगा जैसे सुरंग बन रही हो। धड़कन स्पष्ट होती गई, धक धक धक, अब उसमें दर्द था, घबराहट, सांस की खड़खड़ाहट, ये किसी जीवित शरीर की धड़कन थी जो संकट में था। उसकी चेतना उस ध्वनि की ओर लपकी, अचानक एक झटका, अंधकार फट गया, सफेद प्रकाश नहीं बल्कि धूल मिट्टी की गंध, पसीने की तीखी गंध, और चाबुक की आवाज, चटाक, किसी की कराह। धड़कन तेज, धक 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 धक, उस काली बूंद को जैसे किसी संकीर्ण स्थान में धकेला गया। संकरी नाड़ियां, टूटी हुई प्राण रेखाएं, कमजोर बिखरी हुई ऊर्जा, ये चेतना कापी, ये शरीर उसका नहीं था, ये प्राणपथ उसका नहीं था। चक्र अवरुद्ध, नाड़ियां जली हुई, और हृदय तेजी से धड़कता हुआ। चटाक, फिर चाबुक, उठ, नाटक मत कर, किसी युवक की कठोर आवाज। दर्द की लहर, पर वह दर्द उसकी पुरानी पीड़ा जैसा नहीं था, ये सत ही था, कच्चा। उस काली बूंद ने उस शरीर के मूलाधार को छुआ, टूटे हुए चक्र में हल्की चिंगारी जली। धड़कन एक क्षण को रुकते रुकते बची, मरमत यहां, वही आवाज फिर आए। उसकी चेतना पूरी तरह उस संकरे शरीर में समाने लगी, भारीपन, सीने में जकड़न, फेफड़ों में धूल, आंखों के पीछे जलन। वह सांस लेना चाहता था, पर फेफड़े उसके आदेश को पहचान नहीं रहे थे। चटाक, चाबुक इस बार पीठ पर, और उसी क्षण उसने पहली सांस खींची। धूल भरी, कठोर, पर जीवित धड़कन फिर स्पष्ट हुई। धक धक धक, अंधकार पूरी तरह हट गया, पर आंखें अभी भी बंद थीं। बाहर कोई चिल्ला रहा था, इसे पानी डालो, अगर यही मर गया तो आचार्य हमें जला देंगे। किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंका, त्वचा सिहर उठी। चेतना अब उस शरीर में अटक चुकी थी, पूरी तरह नहीं पर काफी। उस काली बूंद ने उस टूटी प्राण नाड़ी में जगह बना ली, कमजोर पर जीवित, और पहली बार उसे एहसास हुआ वो मरकर भी समाप्त नहीं हुआ, वो किसी और के भीतर धड़क रहा था। बाहर से आवाज आई, आंख खोल, कीड़े। उसकी पलकों ने हल्का सा कांपना शुरू किया, पलकें कांपी, भारी, जैसे किसी और की हों। धूप सीधे आंखों पर पड़ रही थी, तेज चुभती हुई, उसने उन्हें आधा खोला। सब धुंधला, अंधस को आकाश नहीं, मिट्टी का आंगन, पीली धूल जिस पर पसीने और पैरों के निशान थे, और उसके सामने नंगे पांव खड़ा एक युवक, उम्र 20 के आसपास, चौड़ा सीना, भुजाएं कसी हुई, माथे पर लाल तिलक, हाथ में चमड़े का चाबुक। ओहो, युवक झुका, उसके चेहरे के पास आकर बोला, मरा नहीं अभी तक। उसकी सांस में तंबाकू और इलायची की मिली जुली गंध थी। वो बोलना चाहता था, पर गला सूखा था, जीभ जैसे किसी और की, पीठ पर आग सी जलन थी। उसने हल्का सा करवट लेने की कोशिश की, सारी देह चीख उठी, कमजोर, हड्डियां हल्की, मांसपेशियां ढीली। ये शरीर युद्ध का नहीं था, नाटक कर रहा है, युवक सीधा हुआ, 3 दिन से हम लोगों से भाग रहा है, आज देखता हूं कैसे भागता है। चटाक, चाबुक फिर उतरा, इस बार उसने दांत भींचे, आवाज नहीं निकाली। युवक थिदका, अरे आवाज कहां गई तेरी? आसपास खड़े अन्य शिष्य हंसे, शायद सच में मर गया था थोड़ी देर, एक बोला, कौन रखेगा ऐसे को अखाड़े में, प्राण भी नहीं जागे इसके। प्राण, शब्द भीतर गूंजा, उसने आंखें पूरी खोल दी। आंगन चौकोर था, चारों ओर पत्थर की दीवारें, एक ओर तुलसी का चौरा, दूसरी ओर लकड़ी के शस्त्र टंगे हुए। गुरुकुल, हाँ, ये किसी बड़े नगर का नहीं, वनसीमा का छोटा गुरुकुल था। दीवारों पर चूने की परत उखड़ी हुई, कुएं के पास रस्सी लटक रही थी। उसने भीतर देखने की कोशिश की, नाड़ियां, प्राणपद। और जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, झटका, दर्द की लहर रीढ़ से सिर तक दौड़ी। नाड़ियां टूटी हुई थीं, जली हुई, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें खुर्च दिया हो। मूलाधार, बंद, स्वादिष्ठान, सूखा, मणिपुर, लगभग मृत। ये शरीर कभी प्राण जागरण तक नहीं पहुंचा था, और अब उसमें वह था। काली बूंद हल्के से कांपी, कमजोर शरीर में वह बिंदु जैसे विशाल लग रहा था, पर ऊर्जा नहीं थी। युवक फिर झुका, सुन रहा है न, अर्जुन, अर्जुन, तो ये नाम है। उठ, युवक ने उसकी ठुड्डी चाबुक की मूठ से ऊपर उठाई, या फिर मैं उठाऊं? उसने पहली बार बोलने की कोशिश की, आवाज खुरदरी निकली, हटा, हाथ। आसपास हंसी फूटी, युवक की भौं उठी, ओहो, आज तो जवाब भी देगा। उसने धीरे धीरे हथेली मिट्टी पर टिकाई, देह कांपी, मांसपेशियां साथ नहीं दे रहीं, पर उसने उठना शुरू किया। घुटने मुड़े, रीढ़ सीधी होने लगी, हर इंच ऊपर उठते हुए जैसे भीतर की टूटी नाड़ियां विरोध कर रही थीं। युवक पीछे हट गया, आंखों में मनोरंजन, देखो देखो, हमारा महान योद्धा। वो खड़ा हो गया, लड़खड़ाता हुआ, पर खड़ा, धूप आंखों में चुभ रही थी, पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था। उसने चारों ओर देखा, कोई उसे दया से नहीं देख रहा था, न उपहास से, बस तिरस्कार, कमजोर, अयोग्य, अतिरिक्त बोझ। युवक ने चाबुक कंधे पर टिका लिया, उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। अब बता, कर भरेगा या फिर कायरों की तरह भाग खड़ा होगा? उसने युवक की आंखों में देखा, गहरा, सीधा, क्षणभर के लिए युवक का चेहरा स्थिर हुआ। इस दृष्टि में कुछ था, अर्जुन की नहीं, कुछ और, अभ्यास, उसने धीमे कहा। आवाज अभी भी कमजोर थी, युवक हंसा, तेरे बस का नहीं है, प्राण भी नहीं जागे तेरे, दूसरों की थालियां धो, वही ठीक है। भीतर काली बूंद ने हल्की गर्मी छोड़ी, प्राण नहीं जागे? उसने फिर भीतर देखा, हाँ, इस शरीर में प्राकृतिक जागरण की क्षमता लगभग शून्य थी, पर उसके पास अनुभव था, ज्ञान था, निषिद्ध तंत्र की अधूरी स्मृति, और चोरी की गई अग्नि की गंध अभी भी उसकी चेतना में थी। वत्सराज, वह नाम भीतर से उठा, तो खेल अभी समाप्त नहीं हुआ। युवक ने फिर चाबुक उठाया, घुटनों के बल बैठ, दंडवत, 50 बार। आंगन में सन्नाटा, सभी देख रहे थे, उसने युवक को देखा, फिर धीरे धीरे घुटने मोड़े, मिट्टी पर टिकाए, पर दंडवत नहीं हुआ, सिर झुकाया नहीं। युवक की आवाज कठोर हुई, नीचे। उसने ऊपर देखा, धूप उसकी आंखों में थी, पर उनमें झुकाव नहीं। तू मेरा गुरु नहीं, उसने कहा। आंगन में हवा थम गई। युवक के चेहरे पर क्रोध चढ़ा, क्या कहा, उसने दोहराया नहीं, बस देखा, सीधा। युवक ने चाबुक पूरी ताकत से घुमाया और चमड़ा उसकी छाती पर आकर पड़ा, धप, देह पीछे डगमगाई, पर इस बार वह गिरा नहीं। काली बूंद भीतर फिर कांपी और उसके टूटी नाड़ियों के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य चिंगारी जली। चिंगारी इतनी क्षीण कि यदि वह अपने पूर्व जीवन का साधक न होता तो उसे महसूस भी न कर पाता। छाती पर पड़े चाबुक का दर्द अभी भी जल रहा था, त्वचा फट चुकी थी, गर्म रक्त पतली रेखा बनाकर नीचे बह रहा था, पर उसका ध्यान वहां नहीं था, वह भीतर था, मणिपुर चक्र के अवशेषों के पास, जहां सब सूखा, जला और मृत सा पड़ा था, वही, वो सूक्ष्म कंपन। युवक फिर गर्जा, झुकेगा या और पड़ेगा? उसने सिर थोड़ा घुमाया, युवक की आंखों में झांका, इस बार न चुनौती थी, न घृणा, बस शांति। युवक का हाथ एक क्षण के लिए रुक गया, क्या देख रहा है? उसने उत्तर नहीं दिया। भीतर उसने सांस रोकी, धीरे, लंबी। इस शरीर के फेफड़े छोटे थे, सांस अधूरी भरते थे, पर उसने उन्हें मजबूर किया, एक बार, फिर छोड़ी, फिर दोबारा भरी, प्राण नहीं था, पर श्वास तो थी, और जहां श्वास है वहां मार्ग बनाया जा सकता है। उसने मन में एक पुराना सूत्र दोहराया जो वत्सराज ने कभी सिखाया था, जब नाड़ी टूटे उसे जोड़ो मत, उसके चारों ओर नया मार्ग बनाओ। तब उसने नहीं समझा था, अब समझ आया। चाबुक फिर उतरा, इस बार पीठ पर, देह कांपी, घुटने मिट्टी में धंस गए। कुछ शिष्य हंसे, देखा, यही है इसका स्थान। युवक झुका, अब समझ आया? उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ। युवक संतुष्ट सा मुस्कराया, अच्छा है, बुद्धि आ गई। पर उसका हाँ उस अर्थ में नहीं था, भीतर उसने श्वास को रीढ़ के आधार तक धकेला। मूलाधार बंद था, पर बंद दरवाजे के बगल में दीवार थी, और दीवार में दरारें, उसने श्वास को वहां टिकाया, दर्द उठा तेज, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पर उसने छोड़ा नहीं। धीरे धीरे काली बूंद ने प्रतिक्रिया दी, हल्की गर्मी, फिर टिक, जैसे सूखी लकड़ी में नाखून धंसा हो। मूलाधार के पास एक सूक्ष्म मार्ग खुला, बहुत छोटा, बहुत अस्थिर, पर खुला। उसने सांस छोड़ी, देह पसीने से भीग गई, युवक पीछे हट गया। बस आज के लिए काफी है, इसे कुएं के पास ले जाओ, अगर मर गया तो साफ करना पड़ेगा। दो शिष्य आगे आए, उन्होंने उसके बाजू पकड़े। देह अब भी कमजोर थी, पैरों में बल नहीं, पर भीतर वो मुस्कुराया, बहुत हल्का, इतना कि किसी ने देखा नहीं। कुएं की ओर घसीटते हुए एक शिष्य तिरस्कार से बोला, क्यों जिद करता है बार बार, ये सब तेरे बस की बात नहीं। दूसरा शिष्य कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, देगा कैसे, अभी तो एक हफ्ते पहले ही सारी किमिया गोलियां गटक गया था। उसने सिर उठाया, आवाज धीमी थी पर स्पष्ट, तुम्हारे बस का है। शिष्य चुप हो गया, वे उसे पत्थर की जगत के पास छोड़ गए। कुएं से पानी की बाल्टी निकाली गई, ठंडा पानी उसके सिर पर उंडेल दिया गया। देह कांपी, पर इस बार ठंड ने भीतर की गर्मी को बुझाया नहीं, बल्कि उसे स्थिर किया। वह धीरे धीरे उठकर कुएं की जगत से टिक गया। आंगन अब खाली होने लगा था, शिष्य अभ्यास स्थल की ओर जा रहे थे। चाबुक वाला युवक पीछे मुड़कर एक बार उसे देख गया, दृष्टि में चेतावनी थी। उसने आंखें बंद की, फिर भीतर झांका। टूटी नाड़ियां अब भी टूटी थीं, चक्र अब भी जले हुए, पर मूलाधार के बगल में एक बाल सा पतला मार्ग, उसमें काली बूंद स्थिर थी, छोटी पर जीवित। उसने आंखें खोली, आकाश नीला था, धूप कठोर, देह दुर्बल, नाम अर्जुन, पर भीतर जो था वह वही था, काली अग्नि, और इस बार वह जल्दबाजी नहीं करेगा। उसके होठों पर वही सूक्ष्म अदृश्य मुस्कान फिर लौटी, और कुएं के गहरे जल में उसका प्रतिबिंब क्षण भर के लिए वैसा नहीं दिखा जैसा होना चाहिए था।